समता के विषय में कहने का विचार किया गया है। मनुष्य किसी भी मार्ग से क्यों नहीं चले, समता जो है वो कसौटी है। जितनी समता मनुष्य में है उतना ही वो परमात्मा के नजदीक है। साधन काल के वहां भी सम और माने साधन काल के बीच के मां भी जितनी समता है उतना ही वो परमात्मा के नजदीक है। और सिद्ध काल के बीच में तो सर्व प्रकार से समता उसमें आई जाती है। और परमात्मा का स्वरूप जो है वो ही सम है। ये जो समता जो गुण है ये एक प्रकार का भाव है, ये एक प्रकार की कसौटी है। और परमात्मा का स्वरूप जो सम है वो ऐसा चेतन है। तो यह जो समता है और परमात्मा को स्वरूप भी जो सम है उसको बहुत ही ऐसा डिफरेंस है। या तो एक प्रकार से बुद्धि की वृत्ति है यह जो समता है, और वो समता परमात्मा को स्वरूप है। इस समता को तो समझो कि मनुष्य ने ज्ञान हो है, और या तो एक प्रकार से मन की समता बुद्धि की समता, मन और बुद्धि एक ही चीज है, अंतःकरण है। मनन करने के समय उसी अंतःकरण का नाम मन है, और निश्चय करने के समय उसी का नाम बुद्धि है। भगवान कहते हैं कि ये जिते सर्गो ऐसा सामे मनो निर्दोष संग ही समन ब्रह्म तस्मात ब्रह्मणी ते चिता। जिनका मन समता में स्थित है उन पुरुषों ने यही संसार को जीत लिया। अर्थात यूं समझो उन पुरुषों के द्वारा यह संसार जीता गया। अर्थात वे जीवन मुक्त पुरुष हैं जिनका मन समता में स्थित है। ब्रह्म जो है सो निर्दोष है और सम है, इसलिए जिनकी समता में स्थिति है उनकी ब्रह्म में स्थिति है। जैसे कई हम लोग जो हैं कोई पहाड़ की संजो की तलेटी में बैठे हैं और सूर्य भगवान उदय हो गए। एक भाई कहता है कि सूर्य उदय हो गया किंतु सूर्य दिखता नहीं। दूसरे ने कहा कि सूर्य उदय हो गया इसके लिए क्या प्रमाण है कि देखो इस पहाड़ की चोटी के ऊपर धूप आ गई। ये जो धूप जो है बिना सूर्य के नहीं हो सकती। तो पहाड़ की चोटी पर धूप को देख कर करके ये निश्चय किया गया कि सूर्य उदय हो गया। तो सूर्य जो है वो धूप से एक प्रकार से अलग है। सूर्य से ही है धूप किंतु सूर्य तो धूप से अलग है। तो इसी प्रकार से थी या जो समता है सिद्ध पुरुष के हृदय में जो समता है वो परमात्मा से ही है किंतु परमात्मा उससे भिन्न है। तो जैसे यह जो समता है वो परमात्मा को ही एक आभास है, जैसे वो धूप जो है वो सूर्य का ही आभास है। तो जिस प्रकार से थी यहाँ पहाड़ की जगह के वहां समझना चाहिए अंतःकरण, और समता की जगह समझना चाहिए धूप, और सूर्य की जगह समझना चाहिए परमात्मा का स्वरूप। तो परमात्मा का जो स्वरूप है वो एक प्रकार से सम है, तो संसार के मां जो ये क्षमता जो वृत्ति है वो उसे परमात्मा का ही एक आभास यानी प्रतिबिंब है। जैसे चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है वो चंद्रमा से ही है, तो चंद्रमा का एक ही समय के मां हजारों लाखों जगह जो है तो प्रतिबिंब पड़ सकता है। इसी प्रकार से वो क्षमता जो है हजारों लाखों करोड़ों मनुष्यों के हृदय के मां रह सकती है। वो है क्षमता परमात्मा से ही, किंतु परमात्मा तो चेतन है और ये जो क्षमता है ये जड़ है। ये प्रतिबिंब का जो दृष्टांत है, सूर्य के आभास का जो दृष्टांत है, ये सर्वथा नहीं करता, एक देशी बात बताई जाती है, क्योंकि वहां तो एक पदार्थ चेतन और एक जड़ है और यहाँ दोनों ही जड़ है। ये दिखलाना है कि परमात्मा एक प्रकार से सम है, किंतु वो समता दूसरी प्रकार की है, विलक्षण है, और ये भी समता है। तो साधन के समय के बीच के मां भी समझो कि जितना मनुष्य के मां राग द्वेष कम है उतना ही वो परमात्मा के नजदीक है, और जितनी समता है उतना ही राग द्वेष का अभाव है। अनुकूल पदार्थ के मां राग और प्रतिकूल में द्वेष, ये स्वाभाविक ही है। अनुकूल के बीच के मां हर्ष और प्रतिकूल के मां शोक, तो जितने जो विकार है हर्ष शोक राग द्वेष ये दो प्रकार की वृत्ति से ही होते हैं, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल के मां राग प्रतिकूल में द्वेष उत्पन्न होकर के फिर राग द्वेष से ही समझो कि हृदय में रहने वाले सारे विकार पैदा होते हैं। इन सब का कारण है समझो कि अहंकार और अविद्या अज्ञान। अज्ञान तो सब अनर्थों का मूल है ही, तो जितना ज्ञान बढ़ता चला जाता है उतना ही अज्ञान नाश हो जाता है, इसलिए ये सब अज्ञान मूलक चीजें हैं। तो साधन काल के मां भी क्षमता की आवश्यकता है, चाहे मनुष्य सांख्य मार्ग से चले और चाहे योग मार्ग से। योगस्य कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समूहत्वा समत्वं योग उच्यते। अर्जुन तू योग के अस्तित्व होकर के और कर्मों का आचरण कर, आसक्ति से रहित होकर यानी आसक्ति का हे धनंजय आसक्ति का त्याग करके तू योग में स्थित होकर के और शास्त्र विहित कर्मों का आचरण कर। कर्मों के मां सिद्धि और सिद्धि के मां जो समता है उसी का नाम योग है। इसी प्रकार से थी समझो सांख के विषय के बीच के मां यंग हीन व्यथियंते थे पुरुषं पुरुषस्य समदुःखं सुखं धीरं सोमृत तत्वाय कल्पते। जो इन सुख दुख और हरख शोक शीत उष्ण आदि के द्वारा जो व्यथित नहीं होता है, इनके द्वारा जो व्यथित नहीं होता है वह धीर माने ज्ञानी पुरुष सुख दुख में जो सम है वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए ब्रह्म प्राप्ति के लिए समर्थ है, यानी वो ब्रह्म प्राप्ति के लिए पात्र है। परमात्मा की प्राप्ति के वो नजदीक है जिसके मन समभाव है, जो सुख और दुख में सम है और समझो कि किसी प्रकार के विकारों से जो विचलित नहीं किया जा सकता है, ऐसा जो धीर स्थिर प्रज्ञ ज्ञानी महात्मा पुरुष समझो परमात्मा की प्राप्ति के लिए योग समझा जाता है। तो यहाँ समझो कि ये सांख का विषय है जो गीता की दूसरी अध्याय के 15 के श्लोक में बताया गया, और वो पहला जो है गीता की दूसरी अध्याय के 48 के श्लोक में बताया गया। डेली दीपक न्याय की जो भगवान अर्जुन को गीता की दूसरी अध्याय के 38 के श्लोक में कहते हैं कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जयु તો યુદ્ધાય યુદ્ધ ને ઈવન પાપ મુશી સુખ દુઃખ લાભ ધનિકો જય પરાજય કો સમાન સમજ કરકે તું યુદ્ધ સો કર, યુદ્ધ કે લીએ હિ તું યુદ્ધ સો કર, અર્થાત સમજો કે અપના કર્તવ્ય સમજ કરકે યુદ્ધ સો કર, ઇસ પ્રકાર સે કરને સે તું પાપ કો પ્રાપ્ત નહીં હોગા. અર એ સાથે ભીતા સંખે યે સમતા કી વાત મેં તેરે પ્રતિ શાંખ કે વિષય મેં પહેલા કહે ચુકા, જો આપકો અભી બતરાયા ગીતા કી દૂસરી અધ્યાય કે 15 કે શ્લોક મેં. ઓર ઇસી બુદ્ધિ કો તું આગે સુન, તો આગે જા કરકે બતરાયા જો આપકો બતરા ચુકા દૂસરી અધ્યાય કે 48 કે શ્લોક મેં, તો સાધન કાળ કે બીચ મેં વિષમતા કી આવશ્યકતા હૈ. મનુષ્ય કિસી ભી દ્રષ્ટિ સે કર્મો કા આચરણ કરે, या सांख योग की दृष्टि से या कर्म योग की दृष्टि से, समता ही उसकी कसौटी है. और इसी प्रकार से थी सिद्ध अवस्था के माँ भी. सिद्ध अवस्था के माँ भगवान कहते हैं समा शत्रु च मित्र च तथा मानापमान शीतोष्ण सुख दुखेशु समय संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुति मोहनी संतुष्ट हो ये केनचित अनिकेत श्रीमती भक्तिमान में प्रियो नर. સમય શત્રુ છે મિત્ર, જો શત્રુ ઓર મિત્ર કે સમય મહાત્મા પુરુષ કી દ્રષ્ટિ મેં ને તો કોઈ શત્રુ હૈ ને કોઈ મિત્ર હૈ, કિંતુ એક આદમી ઉસકે સાથ મેં શત્રુતા કરતા હૈ, એક આદમી ઉસકે સાથ મેં મિત્રતા કરતા હૈ, તો ઉન દોનો કે માહી ઉનકા સમભાવ હૈ. તો સમય શત્રુ છે મિત્ર છે તથા માનાપમાની, કોઈ ઉસકા અપમાન કરે હૈ કોઈ અપમાન કરે હૈ, કિંતુ વે પુરુષ દોનો મે હી સમ હૈ, માન મે ભી ઓર અપમાન મે ભી. શીતોષ્ણ સુખ દુઃખેશુ, શીત ઉષ્ણ ઓર સુખ દુઃખી પ્રાપ્તિ કે માં ભી વે સમ હૈ. સબ મે આશક્તિ સે રહિત તુલ્ય નિંદા સ્તુતિર મોહની, નિંદા ઓર સ્તુતિ ભી દોનો ઉસકે સમાન હૈ, ક્યું વે સમજતા હૈ કે નિંદા ઓર સ્તુતિ જો હોતી હૈ વો નામ કી હોતી હૈ, તો મે નામ સે રહિત હું, માન ઓર અપમાન જો હૈ સો પ્રાય હૈ, સ્વરૂપ કા હોતા હૈ તો વો નામ ઓર રૂપ દોનો સે હી રહિત હૈ, તીનો શરીરો સે રહિત હૈ ઓર નામ સે રહિત હૈ, ઇસલિયે એક પ્રકાર સે થી વે સબ મે સો સમ હૈ. તુલ નિંદા સ્તુતિ મોહની ઓર સંતુષ્ટ હો યેન કેનચિત, ये न किंचित संतुष्ट है, जो भी कुछ आकर के प्राप्त होता है उन्हें सब में सो सम है. और परमात्मा के स्वरूप का हर वक्त मनन करता रहता है, इस वास्ते उसका नाम मुनि है. और मित भाषी को भी मुनि कहते हैं, किंतु यहाँ भाव से संबंध है. तो मननशीलता का मननशीलता जो एक भाव है वो मुनि का भाव है. અનિકેત શ્રીમતી ભક્તિમાન મે પ્રિય નર, જો નિકેત માને ઘર કરકે રહિત હૈ, અનિકેત હૈ ઓર દેહ કા નામ ભી ઘર હૈ, ઇસલિયે શરીરો સે થી ભી રહિત હૈ, તો અનિકેત શ્રીમતી. ઓર એસા જો સ્થિર બુદ્ધિ પુરુષ હૈ, એસા જો શ્રીમતી માને જિસકી બુદ્ધિ સ્થિર હૈ, એસા જો ભક્તિમાન પુરુષ મેરા ભક્ત મુજકો પ્યારા હૈ, તો ભક્તિ કે માર્ગ કે બીચ કે માં સાધન કાળ કે માં ભી સમતા ઓર સિદ્ધ અવસ્થા કે માં ભી સમતા. સાધન કાળ કી જો સમતા હૈ ઓર સિદ્ધ અવસ્થા કી જો સમતા હૈ ઉસકા યે ફરક હૈ કે સાધન કાળ કે બીચ કે માં તો સમજો કે સમજો ભાવ હૈ, યે ગુણ હૈ, યે જિસમાં હૈ વો ગુણી હૈ, કિંતુ સિદ્ધ અવસ્થા કે બીજ કે માં ઉસકી અંતઃકરણ કે માં સમતા હૈ, કિંતુ વે એક પ્રકાર સે સમજો ભાવ હૈ યા સમજો ગુણ હૈ, ઇસકા કોઈ ધર્મી યા કોઈ ગુણી હોય એસી વાત નહીં. ઇસી પ્રકાર સે થી સંઘ શાસ્ત્ર કે અનુસાર ગુણાતીત પુરુષો કે વિષય મેં ભી એસા હી ભાવ બતરા હૈ. सुख दुख स्वस्थ समलोष्ट आश्रम कांचन तुल निंदा सुख दुख सुख सुख दुख समय स्वस्थ समलोष्ट आश्रम कांचन तुल प्रिया प्रियो धीरस तुल निंदा तु संस्थिति मानप मान योस्तुल्य तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणाती तस उच्यते। जो उस परमात्मा के स्वरूप के माँ या अपने स्वरूप के माँ जो स्थित है और सुख और दुख में जो सम है, मिट्टी का ढेला और पत्थर और सोना जिसके समान है, और प्रिय और अप्रिय मन के अनुकूल और मन के प्रतिकूल पदार्थ उनकी प्राप्ति होने में जो उनमें सम है, और जो धीर है, जो ज्ञानी महात्मा पुरुष है और जिनकी बुद्धि भी ऐसे स्थिर है, और अपनी निंदा और स्तुति में भी समय मान अपमान योस्तुल्य तुल्यो मित्रादि पक्ष हो, जो मान और अपमान में भी समय है और मित्र और बैरी की पक्ष में भी समय है, और सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सोचते, ऐसा संपूर्ण आरंभों का त्यागी पुरुष गुणातीत कहलाता है। तो अब ये विचार करना चाहिए कि किसी भी मार्ग से कोई क्यों नहीं चले, आखिर के बीच क्यों ना उसमें समता आ जाती है। तो समझो है ये परमात्मा का स्वरूप भी है, और समझो है ये भाव भी है। अंतःकरण का जो ये भाव है ये बुद्धि की वृत्ति है, और परमात्मा का जो स्वरूप है वो अष्टो स्वयं चेतन स्वरूप है। चेतन स्वरूप जो परमात्मा है वह स्वयं सम है, और उसी परमात्मा का एक अंश का जो प्रतिबिंब अपने संजो की पड़ता है बुद्धि के ऊपर, वो परमात्मा का ही भाव होने से, प्रतिबिंब होने से, आभास होने से, और सम भाव से सबको प्रतीत होता है। इसलिए हम लोगों को उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मन और बुद्धि के मां समभाव रखना चाहिए। जैसे समभाव है ऐसे ही सत्य भाव है कि परमात्मा सो सत्य है, हमारे हृदय के बीच के मां जो एक सत्य जो भाव रूप है वो एक प्रकार से थी बुद्धि की वृत्ति है, और हमारा जो व्यवहार के मां जो सत्ता है वो भी एक प्रकार से थी बुद्धि की वृत्ति है, हमारा जो भाषण है सत्य वो भी एक प्रकार से उसी का कार्य है। तो इस प्रकार से थी जो कार्य के मां सतता है, व्यवहार में सतता है, वाणी में सतता है, हृदय के मां सतता है, ये सब परमात्मा से है। किंतु ये सब जो है सो क्रिया और जो भाव है ये परमात्मा से होने के कारण से इसके साधन से परमात्मा की प्राप्ति होती है, क्योंकि परमात्मा भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो परमात्मा जो सत्य है वो चेतन स्वरूप है, ये जो सत्ता है यह जड़ सत्ता है। तो जिस प्रकार से थी समता इसी प्रकार से थी सतता। तो सत्य जो है उसके साधन से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, और सम के साधन से भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि परमात्मा सो सत्य है और परमात्मा सो सम है, और ये सब परमात्मा से ही है। जैसे चंद्रमा के प्रतिबिंब को लक्ष्य रखने से वो चंद्रमा का प्रतिबिंब जो है चंद्रमा रूपी बिंब को जता देता है, वो पकड़ा देता है, इसी प्रकार से थी ये जो सतता है और समता है ये परमात्मा से ही होने के कारण से परमात्मा को लक्ष्य कराने के वहाँ इनकी पूरी शक्ति है। इसलिए हम लोगों को सत्य जो स्वरूप है, सम जो स्वरूप है, उसका आसरा लेना चाहिए, यानी उसका साधन करना चाहिए। इस साधन से थी साध्य की प्राप्ति हो जाती है। ये जो बतलाया गया ये एक प्रकार से साधन बतलाया गया। तो सत्यता को लक्ष्य में रख करके हम चलें तो परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं, और समता को लक्ष्य रख करके चलें तो परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्यावर रामचंद्र की जय। और मुकुट हंसवंशी वाले की जय। चार प्रकार के भक्त होते हैं। भगवान कहते हैं गीता में, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति नोर्जुन आर्तो जिज्ञासार्थी ज्ञानी च वर्तार्थ। हे भगवंशी मस्तेष्ठ अर्जुन, इस संसार में उत्तम कर्म के करने वाले चार प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। चारों ही सुकृत है और चारों ही श्रेष्ठ है और चारों ही उद्धार है, माने सभी श्रेष्ठ है और सभी एक प्रकार से आंख में मुक्त हो जाते हैं। फिर भी इन चारों के बीच के वहां अर्थार्थी की अपेक्षा अर्थ श्रेष्ठ है और अर्थ की अपेक्षा जिज्ञासु और उसकी भी अपेक्षा ज्ञानी, ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ। अर्थार्थ उसको कहते हैं अर्थ की कामना वाले, जो अर्थ के लिए बसते हैं। अर्थ का मतलब है कि जैसे रुपया है या और समझो कि संसार के जितने पदार्थ, ये सभी अर्थ है। तो संसार के पदार्थों की प्राप्ति के उद्देश्य से जो भजते हैं, भजने के पहले या भजने के समय के बीच के मां जिनका ये उद्देश्य है कि मुझको रुपया मिले या राज मिले, वे अर्थार्थी। ध्रुजी जो है राज की कामना को लेकर के भगवान को भजने के उद्देश्य से निकले, आगे जा करके उनकी कामना भी मिट गई, किंतु आरंभ में उद्देश्य जो वही था, इसलिए भगवान ने उनको राज भी दिया और मुक्ति भी दी। उससे वे श्रेष्ठ है कि भजने के समय तो कोई कामना नहीं है और कामना के उद्देश्य से भजते भी नहीं है, भजते तो प्रेम से ही है, किंतु आपत्ति पड़ने पर, संकट आने पर, संकट की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो ये आर्थ मान आतुरता के समय में, संकट के समय के मां भगवान को भजते हैं। जैसे द्रौपदी, द्रौपदी में जब जब संकट आता था वो भगवान को पुकारते, भगवान में उसका बड़ा भारी प्रेम था, किंतु संकट की निवृत्ति के लिए भगवान को पुकारा करते, तो वो आर्थ भजते। अर्थार्थी से इसलिए वो श्रेष्ठ है कि उसके भजने का उद्देश्य संकट निवारण नहीं, भजना तो उनका प्रेम से ही है, किंतु आपत्ति आने पर भगवान से अर्ज की जाती है। उससे भी श्रेष्ठ वे भक्त हैं जो जिज्ञासु, संकट करने पर भी संकट की निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करते, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार के उद्देश्य से ही भजते। तो संसारिक कामना के लिए, संसारिक पदार्थों के लिए नहीं भजते और नए भारी से भारी संकट पड़ने पर भी उसकी निवृत्ति के लिए ही भजते, ये उनका उद्देश्य नहीं रहता। उनका उद्देश्य तो केवल यही रहता है कि हमारी आत्मा का उद्धार हो जाए, आत्मा का कल्याण हो जावे। जैसे उदय उससे भी वे श्रेष्ठ है जो निष्काम भाव से भजते हैं। तीन जो है उनमें थोड़ा अज्ञान है, इस वास्ते वे ज्ञानी नहीं। मुक्ति की भी जो इच्छा है वो भी एक प्रकार से कामना ही है, मुक्ति भी नहीं चाहते, मुक्ति की भी कामना नहीं रखते, अपने कर्तव्य समझ करके भगवान को प्रेम से भजते हैं। प्रेम जिनका उद्देश्य है भगवान में, जो परा भक्ति वही अपने समझो की भक्ति है, भगवान में परम जो प्रेम है वही उत्तम दर्जे की भक्ति है। तो
तो उनके साधन काल के वहां भी प्रेम और संयोग की उनका उद्देश्य भी प्रेम, प्रेम के लिए ही भगवान से प्रेम करते हैं और प्रेम का कोई अन्य उद्देश्य नहीं रहता। अथवा जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी और वे भी भगवान को भजते हैं, क्योंकि भगवान को भजें और जब भगवान के भजन से भगवान मिल गए हैं तो फिर उसके बाद में उनका तो भजन और है, उच्च कोटि का होना चाहिए। तो उच्च कोटि के जो साधक हैं वे भी ज्ञानी भक्त जो निष्काम भाव से भजते हैं, और जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई वे भी ज्ञानी भक्त हैं। परमात्मा का ज्ञान होने पर भी भगवान को ऐसा भजते हैं। तो इस प्रकार के ये चार श्रेणी हुई, इनमें चौथी श्रेणी वाले सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनके भीतर में कामना ही नहीं है और ये भी उनका उद्देश्य नहीं है कि निष्काम भाव होने से भगवान शीघ्र मिलते हैं। ये भी एक सूक्ष्म प्रकार से कामना ही है, और ये कामना रहे तो कोई दोष भी नहीं है, ये तो एक प्रकार से निष्काम भाव ही है। जब मुक्ति की कामना भी शुभ कामना मानी जाती है फिर इसकी तो बात ही क्या है, संसारिक जो कामना है वही नीचे दर्जे की है। इसके लिए फिर भगवान कहते हैं तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्ट थे प्रिय ही ज्ञानी हंसत मम प्रिय। उन चारों प्रकार के भक्तों के बीच के वहां नित्य युक्त एक भक्ति वाला जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी जो है उसको मैं अतिशय प्यारा हूँ, इसलिए ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा है। उदारा सर्वे इति ज्ञानी स्वात्म में मतम एते सर्व ए उदारा, ये चार प्रकार के जो भक्त बतलाए सभी उदार हैं, उनके मन ज्ञानी जो है वो तो मेरी आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है। नित्य युक्त का यह मतलब है कि नित मेरे में लगे हुए, नित मेरे में जुड़े हुए, भगवान की समझो की केवल भक्ति ही करते हैं और दूसरी बात नहीं। इस वास्ते एक भक्ति वाले कहें माने जो मेरे अनन्य भक्त हैं वे सब में श्रेष्ठ, क्योंकि ज्ञानी को मैं अतिशय प्यारा हूँ, इसलिए ज्ञानी मुझको अतिशय प्यारा है। सभी उदार है, इस कहने का यह भाव है कि सभी श्रेष्ठ श्रेष्ठ इसलिए हैं कि पहले वे मुझको भजते हैं उसके बाद उनको मैं भजता हूँ। यदि सब मेरे समान हैं फिर भी भजने वालों को मैं भजता हूँ, तो वे पहले मुझको जो भजते हैं तो ये उनकी उदारता है।